क्या इसराइल का उद्धार होगा? रोमियो अध्याय 11 वचन 1 कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इसराइली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने इसराइलियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि स्वयं पौलुस भी एक इसराइली था। परमेश्वर रोमियो अध्याय 11 वचन 2 से 5 में कहता है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है, कि वह इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्य वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए लोग बाकी है। जैसा कि परमेश्वर ने हमें बताया कि बहुत से इसराइली यीशु पर विश्वास करके उसके पास वापस आएंगे, बहुत से यहूदी अपने पापों से बच जाएंगे। हमें विश्वास करना चाहिए कि जब समय का अंत आएगा तो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने और यीशु मसीह के पास आने के द्वारा बड़ी संख्या में अन्य जातियों को उनके पापों से छुटकारा मिलेगा। पौलुस ने पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? यहां पौलुस इस तथ्य का उल्लेख कर रहा है कि अंत में बहुत से इसराइली होंगे जो परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करेंगे, जो उनके पापों को दूर कर देगा। एलिया से बोले गए परमेश्वर के वचन के साथ पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि इसराइलियों में से कई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। हम इस वचन में विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र में संख्या 7 पूर्णता का प्रतीक है। परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन वह विश्राम किया। परमेश्वर ने उन 7,000 लोगों को सुरक्षित रखने का वादा किया था जो बाल के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इसका अर्थ यह था कि ऐसे कई इसराइली होंगे जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा अपने पापों से उद्धार प्राप्त करेंगे। इसराइलियों और अन्य जातियों के बीच संबंधों की व्याख्या करते हुए पौलुस ने विश्वास किया कि इसराइल के लोगों में से बहुतों को बचाया जाएगा। क्या वे ठोकर खाकर गिर पड़े? पौलुस ने रोमियो अध्याय 11 वचन 6 से 12 में कहा कि यदि इसराइलियों ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया होता कि यीशु उनका उद्धार करता है, तो अन्य जातियों के उद्धार का युग नहीं होता। क्योंकि इसराइलियों ने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार के से बचने का मौका दिया। इसके द्वारा परमेश्वर का इरादा इसराइलियों के लिए अन्य जातियों से ईर्ष्या करना था जो यीशु में विश्वास करते थे और उसकी संतान बन गए थे। तब इसराइली यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देंगे और अंत में इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि यीशु मसीह वास्तव में उनका मसीहा है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र ठहरी। रोमियो अध्याय 11 वचन 13 कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। पौलुस ने कहा कि उसने अन्य जातियों के एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवकाई को बढ़ाया। वह अपने ही देह और लहू के लोगों को नया जन्म देने वाले अन्य जातियों से ईर्ष्या करने के लिए उकसाकर उन्हें बचाना चाहता था। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। रोमियो अध्याय 11 वचन 15 और 16। इस बात का अर्थ है कि यदि इब्राहिम इसराइलियों की जड़ को बचाया गया और उसने परमेश्वर के वचन में विश्वास करके परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया है, तो यह भी संभव था कि इसराइली यानी कि अब्राहम की डालियां बचाई जाएगी। उसी समय पौलुस ने नया जन्म प्राप्त किए हुए अन्य जातियों को चेतावनी दी कि वे घमंड न करें, क्योंकि वे परमेश्वर के पवित्र लोग बन गए हैं। क्योंकि एक जंगली जैतून के पेड़ की टूटी शाखाओं को एक खेती वाले जैतून के पेड़ में लगाने के द्वारा नया जीवन दिया जाता है, जैसा कि रोमियो अध्याय 11 वचन 18 कहता है, तो डालियों पर घमंड न करना, पर यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हम परमेश्वर के लोग बन गए क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से बच गए हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़ देते हैं तो हम भी त्याग दिए जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हमारे सभी पापों से बचाने के लिए परमेश्वर की सभी धार्मिकता को पूरा किया है। और क्योंकि हम वास्तव में हमारे सभी पापों से बचाए गए हैं, हम परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता में अपने विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, न कि हमारे अपने कर्मों के द्वारा। हम अन्य जाति परमेश्वर की धार्मिकता में अपने विश्वास के द्वारा उसके लोग बन गए, इसराइलियों की टूटी ढालियों के स्थान पर प्रस्थापित किए गए। हम मजबूती से खड़े रह सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करके मसीही और यहूदी दोनों को यीशु में परमेश्वर के लोगों के रूप में रखा जा सकता है। यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से उसके न्यायपूर्ण न्याय के द्वारा हमारे पापों के कारण मरेंगे। पौलुस ने पहले इसराइलियों को यह चेतावनी दी, परंतु हम भी इस चेतावनी से मुक्त नहीं है। परमेश्वर ने हम पर यानी कि अन्य जातियों पर दया की और अपनी धार्मिकता से हमें पूरी तरह से बचाया। जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं वे अपने सभी पापों से बच जाते हैं। आज भले ही सारे मसीही अस्वीकार करते हैं कि यीशु उनका उद्धार करता है, लेकिन यदि वे परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास नहीं करते हैं जिसने उन्हें बचाया है, तो उनको नष्ट कर दिया जाएगा। रोमियो अध्याय 11 वचन 23 और 24 कहता है, वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो सांटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर सांट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में सांटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालिया है अपने ही जैतून में क्यों न सांटे जाएंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के पास उसकी धार्मिकता में विश्वास करने के लिए सभी का नेतृत्व करने की सामर्थ है। पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता में उस सामर्थ का वादा किया गया है। इसराइलियों और अन्य जातियों दोनों के लिए उनके कर्म उन्हें परमेश्वर की संतान बनने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे परमेश्वर की धार्मिकता और उसे अपना लोग बनाने की उसकी प्रतिज्ञा में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिक व्यवस्था की धार्मिकता को पूरी तरह से अलग कर देती है। परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा इसराइली और संसार भर के अन्य जाति दोनों अपने विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे। यह परमेश्वर के महान उद्धार की आशीष है जो हमारे द्वारा फैलाए गए सुसमाचार के माध्यम से पूरी होगी। परमेश्वर की यह सामर्थ उसकी धार्मिकता में किए गए विश्वास की उसकी प्रतिज्ञा है। आइए हम रोमियो अध्याय 11 वचन 26 और 27 को देखें। और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह समय के अंत में इसराइलियों को बचाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने स्वयं इसराइलों के मन से बुराई और गंदगी को दूर करने के और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में विश्वास करने का वादा किया। हालांकि उनके पूर्वज वफादार थे, फिर भी इसराइलों को स्वयं उद्धार नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिलों को छूकर और परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा उन्हें निकट भविष्य में बचाए जाने की इच्छा की है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। आइए हम वचन 32 को पढ़ें, जो कि एक बहुत ही गहन वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। हर कोई विद्रोह करता है और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है। कोई भी पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है। उसका कारण यह है कि वह हमें करुणा और प्रेम के दे सके। यह बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक सत्य है। इस भाग के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर क्यों रखा था। उसका उपाय कितना अद्भुत है। परमेश्वर ने हमें अवज्ञाकारी के रूप में रखा है ताकि वह हमें उसकी सिद्ध धार्मिकता और दयालु प्रेम दे सके। हम केवल उस पर विश्वास कर सकते हैं और उसके अद्भुत उद्देश्य के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। यहां तक कि परमेश्वर ने इसराइलियों को अपनी धार्मिकता का प्रेम देने के लिए आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। इसराइली अभी भी यीशु को तुच्छ समझते हैं, उसे नासरत के दरिद्री के रूप में देखते हैं, जबकि कई अन्य जाति मसीही उसे पैसा कमाने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। जो लोग परमेश्वर के दयालु प्रेम की अवज्ञा करते हैं उनके पास नरक में भेजे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। परमेश्वर ने उनके लिए जलते हुए नरक को पहले ही तैयार कर दिया है, लेकिन वह लोगों को नरक में जाते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उसे उन पर बड़ी दया आती है। मैं तुम्हें नरक में कैसे भेज सकता हूं? अन्य जातियों की बड़ी संख्या उसके उद्धार में आने के बाद बहुत से इसराइली यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे। जब 7 साल के क्लेश को अंतिम भाग के दौरान मसीही विरोधी उन्हें सताएगा, भविष्य में अनगिनत संख्या में विश्वासी जो यीशु को परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में स्वीकार करते हैं इसराइलियों में से उठ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। और अद्भुत भाग बताता है कि परमेश्वर ने सभी पापियों को परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा बचाए जाने की अनुमति दी है। परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि जब क्लेश के दौरान पर्याप्त संख्या में अन्य जाति के लोग शहीद हो जाएंगे तब वह इसराइलियों को पश्चाताप करवाएगा और मसीह में विश्वास करवाएगा। जैसा कि रोमियो अध्याय 11 वचन 33 में पौलुस कहता है, आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। सभी सच्चे ज्ञान और दैवीय पूर्ति परमेश्वर से आती है। उन्होंने शुरू से ही सभी मनुष्य को अपर्याप्त प्राणी बनाया। यह परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है जो हमें उसका उद्धार प्राप्त करने की अनुमति देती है। इस वजह से अंत के दिनों में उस पर विश्वास करने से इसराइलियों का भी उद्धार होगा। हम सभी के पास कूड़ेदान और आग में फेंके जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया, उसकी धार्मिकता की योजना बनाई और उसे पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा थी कि जब सारी मनुष्य जाति शैतान की परीक्षा के द्वारा और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा पापी बन गई, तब पुराने नियम में तंबू की बड़ी प्रणाली के अनुसार सभी पापियों को यीशु के बपतिस्मा और लहू से बचाया जाए। तो फिर कैसे कोई परमेश्वर की बुद्धि के विरुद्ध खड़े होने का साहस कर सकता है? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इस सत्य को कैसे समझ सकता है कोई कि परमेश्वर ने हमें अपनी दया देने के लिए आज्ञा उल्लंघन के बंदी बनाकर रखा है? किसी की यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि परमेश्वर गलत है? कोई यह कहीं नहीं कह सकता। सारी महिमा और दैवीय विधान सदा सर्वदा उसके हैं। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से भरकर यह लिखता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो अध्याय 11 वचन 34-36। यद्यपि हम कमियों से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता के सुसमाचार को फैलाने के लिए जीवन जीते हैं। जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता के सुसमाचार के विरुद्ध खड़े हैं वे परमेश्वर के शत्रु हैं। ये सही है, ऐसे लोग हमारे बीच भी उठ सकते हैं, और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए ताकि हम में से कोई भी इस तरह के प्रलोभन में न पड़ जाए। किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी सुसमाचार के विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए। हमें अविश्वासी मन से पानी और आत्मा के सुसमाचार के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं वे इस दुनिया और आने वाली दुनिया में नष्ट हो जाएंगे। इसराइलियों के लिए यीशु पर विश्वास करने का समय निकट है। कितना अद्भुत होगा यदि इस पृथ्वी पर 6 अरब लोग परमेश्वर के पास वापस आए और उद्धार प्राप्त करें। धर्मी जो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं उन्हें न केवल वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए बल्कि इसराइलियों के लिए नियोजन परमेश्वर के कार्य को भी देखना चाहिए और अपने विश्वास को एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रवेश करने और रहने के लिए तैयार करना चाहिए। धर्मी को हमेशा विश्वास और आशा से जीवन जीना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन इसराइली मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे वह दिन निकट है। प्रभु यीशु जल्दी आइए।